यह द्रव्य है गुण है या पर्याय है? पर्याय है तो कौन से गुण की? संस्कार। संस्कार के बारे में ये कह रहे हैं कि संस्कार को हम द्रव्य माने या गुण माने या कि पर्याय माने। अगर हम उसको पर्याय मानते हैं तो वो कौन से गुण की पर्याय है, क्योंकि पर्याय तो एक एक समय की होती है। द्रव्य ध्रुव है, फिर ये अनादिकालीन संस्कार की क्या स्थिति है? देखो भाई, कोई भी पर्याय होती है तो वो द्रव्य या गुण में से ही प्रकट होती है। संस्कार को हम पर्याय मानेंगे। जैसे जैसे हम कर्म बांधते हैं वैसा हमारे आत्मा पर संस्कार पड़ता है। वो जो संस्कार है वो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन वो चेतना के साथ संबद्ध होकर के सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनना, ये पुद्गल का जीव पर भी उपकार है और जीव का भी जीव पर उपकार है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। तो इससे ये निश्चित हुआ कि पुद्गल तो है द्रव और उसकी पर्याय है संस्कार। हम अपनी भाषा में कर्म की भाषा में कहेंगे कर्म और सामान्य भाषा में उसी को कहेंगे संस्कार। हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त है वो हमारे ज्ञान के संस्कार से प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे ज्ञान के क्षयोपशम से प्राप्त, क्योंकि जितना जितना कर्म का आवरण हटा है उतना ही क्षयोपशम हुआ है। हमारे लिए ज्ञान का उतना ही संस्कार, जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान का संस्कार। इस तरह सब प्रकार से विचार करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि यह संस्कार और कुछ नहीं है, एक पर्याय है। वो पर्याय कौन से गुण की है? तो जैसे जिसके संस्कार, ज्ञान का संस्कार है तो वह पर्याय सद्रूप होगी। हाँ, और विशेष रूप से देखा जाए तो अगर हम चेतना की पर्याय माने तब तो फिर वो हमेशा रहनी चाहिए, फिर तो वो सिद्ध अवस्था में भी होनी चाहिए। इसलिए चेतना की पर्याय तो नहीं है, लेकिन पुद्गल उसका उपादान कारण है, निमित्त से होती है वो चेतना के। संस्कार चेतना में होते हैं, चेतना के निमित्त से होते हैं, पर उनका उपादान कारण कौन है? जैसे हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो राग द्वेष का उपादान कारण क्या है? वास्तव में तो ये राग द्वेष जो विकारी भाव हैं, जो विकारी संस्कार हैं, वे उद्गल उनका उपादान है आत्मा के निमित्त से। क्यों? मेरे ख्याल से अब प्रश्न इनका सिर्फ ये है कि अपन जो कहते हैं कि अनादि संस्कार से ये चला आ रहा है, तो पर्याय तो एक समय की होती है। एक उदाहरण से समझें अपन। जैसे कि अपन शाम को लौट के आते हैं और माँ पूछती कि भैया वो हमने जो तुम्हें 12 बजे डिब्बा भेजा था खाने का, वो खाया कि नहीं खाया? अरे माँ क्या बताएं, ग्राहकों का तांता लगा रहा, समय ही नहीं मिला। अच्छा, तो क्या एक ही ग्राहक में उलझे रहे क्या? नहीं, एक आया गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया, ये निरंतर चलता रहा। इसलिए क्या कहेंगे अपन? ग्राहकी से फुर्सत नहीं मिली। ठीक इसी तरह कर्म अपना फल देने से पहले और नए संस्कार उत्पन्न कर चुका है फिर बाद में निद्रा को प्राप्त होता है। यह जो संस्कार वो निरंतर रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संस्कार अनादि काल से चले आ रहे हैं। राग द्वेष के संस्कार वही के वही नहीं है भैया, मिथ्यात्व हमने आज बांधा है तो वो हमें फल कब देगा, और उस बीच में हम और कितनी स्थिति वाले मिथ्यात्व कर्म को बांध लेंगे, वो सब अपने अपने ड्यूरेशन पूरे होने पर और हमें फल देता चला जाएगा। इसलिए अनादिकालीन जो संस्कार है वो कथन की शैली है, वास्तव में तो सब कर्म अपना पर समय समय पर उदय में आकर के निर्धारित होते चले जाते हैं। ऐसे सामान्य अनंत प्रभु जिनके पांचों कल्याणक नहीं होते, समोशरण आदि की रचना नहीं होती, उनके चालीस गुण किस प्रकार घटित होंगे? भैया ये जो अरहंतों के चालीस गुण कहे हैं सो वे तीर्थंकर की मुख्यता से कहे हैं, ये ध्यान रखें। मुख्यता वहां पर मैक्सिमम अरहंत को कितने होंगे तो तीर्थंकर की अपेक्षा से चालीस होंगे, बाकी सब में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, जिनका जन्म कल्याणक नहीं हुआ उनको जन्म के अतिशय 10 तो होंगे ही नहीं, तो 34 अतिशय में से 10 ये कम हो गए, और केवल ज्ञान के अतिशय तो सभी को होंगे तो केवल ज्ञान के 10 होंगे। देवकृत 14 अतिशय, समोशरण होने पर ही देवकृत 14 अतिशय होते हैं, समोशरण लगा नहीं है इसलिए वे भी नहीं होंगे। 8 प्रातिहारी, 4 अनंत चतुष्ट है, ये तो सबके समान रूप से ही रहेंगे। इस तरह से अरहंतों के मैक्सिमम अरहंतों के 40 होते हैं, बाकी सबके जरूरी नहीं है कि 40 ही रहें, कमती भी। हाँ, तीर्थंकर भगवंतों का शरीर भी केवल ज्ञान प्राप्ति तक औदारिक ही है, ठीक है। तो आहार निहार होता है या नहीं होता? यदि निहार ही नहीं है तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर के पुत्र पुत्री उत्पन्न होने का प्रसंग कैसे आएगा? अरे भैया थोड़ा और समझो इसको, तीर्थंकर की तो छोड़ो, तीर्थंकर के माता पिता को निहार नहीं होता, तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं उसको अशुद्धि तक नहीं होती, अब करो क्या करो। हाँ वो महापुरुष हैं, और तीर्थंकर ऐसे हमारे जैसे माँ के पेट से जाल में लिपटे हुए और मांस और खून से लिप्त नहीं आते हैं, ऐसे बिल्कुल बाहर आकर के, ना उनको कोई पहुंचना धुलाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है उनके लिए, इतने पवित्र होते हैं उनकी देह, पढ़िएगा उसमें तो मालूम पड़ेगा। अब रही बात जिनके निहार नहीं होता उनके क्या संतान उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है कि यदि निहार नहीं होता तो गृहस्थ अवस्था में पुत्र पुत्री उत्पन्न कैसे होंगे? तीर्थंकर के भी होते हैं और तीर्थंकर के माता पिता उनके भी निहार नहीं होता, तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उनका आहार भी नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान से पहले गृहस्थ अवस्था में या मुनि अवस्था में उनके निहार नहीं होता। निहार के मतलब समझते, मलमूत्र की बाधा नहीं होती, निहार का मतलब मलमूत्र की बाधा नहीं होना, वो निहार कहलाता। और आहार भोजन तो करते हैं लेकिन उनके आमाशय में जाकर के वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता 100%। जैसे कि अपन लोग को साइंस के हिसाब से देखें तो अपन दूध पीते हैं तो उसका 90% स्वस्थ व्यक्ति को दूध का 90% एब्जॉर्ब होता, 100 ग्राम पिया था 90 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो मल और मूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनके लिए वो भी नहीं होता, उनका पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो निहार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थंकर को भी, तीर्थंकर के माता पिता को भी, पर उनके बाकी सब चीजें नॉर्मल जैसे अपन के होते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। प्रश्न तो उठता है मन में, द्रव दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, हाँ भैया उसके स्वभाव में कभी विकृति का प्रवेश नहीं है, किस अपेक्षा से? शक्ति की अपेक्षा, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, इतना अपन को जरूर समझना चाहिए। उसके स्वभाव में शक्ति की अपेक्षा से कभी विकृति नहीं होती। अशुद्धता तो एक एक समय की पर्याय में है, अशुद्धता के समय भी आत्मद्रव तो द्रव अपरिणामशीली है, फिर क्या पूरे आत्मद्रव को ही अशुद्ध मान लिया जाए, जबकि अशुद्ध आत्मा ने अपने त्रिकाली संकोट की स्वभाव को बिल्कुल भी मदद नहीं किया। ऐसी स्थिति में स्वभाव दृष्टि से द्रव गुण पर्याय तीनों ही क्या शुद्ध नहीं है? ये तो आखिरी की लाइन जो आपने बहुत अच्छी लिखी, स्वभाव दृष्टि से या जिसको अपन कहें निश्चय की दृष्टि से है द्रव गुण पर्याय तीनों ही शुद्ध हैं, ये निश्चय की कथनी है। लेकिन जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो जिसकी पर्याय अशुद्ध है उसके गुण भी अशुद्ध हैं, उसका द्रव्य भी अशुद्ध है। जिसमें से वो पर्याय निकली है वो तो शुद्ध रहा है, और पर्याय अशुद्ध निकले ऐसा नहीं होता। स्वभावात अन्यथा भवनम विभाव, स्वभाव से अन्यथा परिणमन होना ही विभाव कहलाता है। कथन करने की शैली है भैया, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हम जब कथन करते हैं तब दूसरे के संयोग की अपेक्षा से कथन करते हैं, तब हमें कहना पड़ेगा कि ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही हैं और विकारी हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राग द्वेष परिणाम अगर आत्मा के हैं तो फिर आत्मा इनसे कभी मुक्ति नहीं हो सकता, प्रश्न उठेगा। तो कहते नहीं, वास्तव में तो ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये उसकी